તારીખ 11/3/1993 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા શ્લોક નંબર 116, 117 અને 118 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 62.
સમયસર કળશ ટીકા આશ્રવ અધિકાર કા ચોથા કળશ શરૂ કા ક્રમ સે લેવે તો 116 નંબર કા કળશ શ્લોક કા વિષય હૈ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ આશ્રવ કો અપના સ્વરૂપ કા અવલંબન લેકે મિટાતા હૈ. आश्रव को मिटाने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है. अपना स्वरूप का अवलंबन लेना, उतना अवलंबन लेना, आधार लेना, अंतर्मुख होना, इस शब्द का अर्थ तो अपन जानते हैं, लेकिन अवलंबन नहीं किया जाता है या अवलंबन लेने में नहीं आता है तो अर्थ वाला ज्ञान ओक संज्ञा रूप है. कैसा है? ओक संज्ञा रूप ज्ञान है. अवलंबन लेना ये तो एक कार्य है. शब्द का अर्थ मालूम पड़े, शब्द का अर्थ समझ में आवे, फिर भी अवलंबन कैसे लेना वो नहीं आता हो तो समझ है वो ओक संज्ञा वाली है. क्या अंतर है? शब्द का अर्थ तो बराबर है, लेकिन बराबर कब? के अवलंबन लेने आवे, लेने को आवे तब. इसके पहले बराबर होते हुए भी ओक संज्ञा में है, उसका कोई फायदा जीव को नहीं मिलता. चर्चा सुबह चली ना थोड़ी. ओक संज्ञा अवलंबन लेना ठीक बात है, हम बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेते हैं. अगर हमारा अवलोकन नहीं होगा, हम कैसे बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेते हैं, तो अवलंबन विषयक हमारा ज्ञान है वो ओक संज्ञा में रह जाएगा. उल्टा अवलंबन समझ में आएगा परिणमन से, परिणमन का अनुभव से, तो सुल्टा परिणमन का अनुभव हो सकता है. उल्टा की खबर नहीं तो सुल्टा की खबर कहाँ से पड़े? यहाँ यह कहते हैं कि जो आश्रम है, जो स्वरूप के अवलंबन से नाश किया जाता है, वो आश्रम दो प्रकार, आश्रम जो है, आश्रम के परिणाम है वो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप है, जीव के अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है. उसमें दो प्रकार है, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक. तो बुद्धिपूर्वक माने कि बुद्धि में समझ में आवे, बुद्धि को बुद्धि में ग्रहण हो सके, स्वयं को भी पता चले और दूसरों को भी पता चल जाए कि ये जो आश्रव है वो हमारा ऐसा परिणाम हुआ मिथ्यात्व राग द्वेष का. ऐसा वो मन द्वारा प्रवर्तते हैं और उसका ज्ञान बुद्धि में होता है. ऐसे परिणाम को बुद्धि पूर्वक कहा जाता है. सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मिट सकता है. उसको मिटाने के लिए उसको पता चलता है स्वपर प्रकाशक ज्ञान में कि मेरा ऐसा परिणाम होता है, तो ऐसे परिणाम को वो मिटा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा परिणाम जीव की जानकारी में है, अपना दोष जानकारी में आता है, और बुद्धिपूर्वक का दोष है वो मिटा सकते हैं। वो कैसे मिटा सकते हैं? कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा का भी है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से उसको मिटा सकते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मिटता है, सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मिटता है, क्योंकि ये स्थूल है, बुद्धिपूर्वक का है वो स्थूल है, अबुद्धिपूर्वक का है वो तो सूक्ष्म है, केवली गम्य है। वहां तक तो बात चली बुद्धिपूर्वक की, अब अबुद्धिपूर्वक की बात करते हैं। कि अबुद्धिपूर्वक परिणाम कहने पर पांच इंद्रिय और मन के व्यापार बिना ही मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध विभाव परिणाम आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है। क्या होता है कि अबुद्धिपूर्वक में तो जीव को पता नहीं चलता है, बुद्धिग्राह्य नहीं होता है, लेकिन परिणमन होता है, उधर मोह कर्म का उदय है और जीव का परिणमन पूरा प्रदेश में, असंख्य प्रदेश में, पूरा प्रदेश में राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम हो जाता है। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है, जीव स्वयं नहीं जान सकता उसको, उतना सूक्ष्म है कि जीव की बुद्धि है वो स्थूल है, मोटी है, और परिणमन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो जानकारी में नहीं आता। और जीव का सहारा का भी नहीं है, सारा मैंने इलाज नहीं थे, हम आए इलाज छे, जो जानकारी में आता है उसका तो इलाज करे, लेकिन जो जानकारी में नहीं आवे इसका क्या इलाज करे। इसलिए जिस किसी प्रकार मिटा नहीं जाता, इसलिए उसका बुद्धिपूर्वक मिटाने का कोई इलाज किया नहीं जाता, तो फिर इसको कैसे मिटावे। अतएव ऐसे परिणाम को मिटने के लिए निरंतर पने शुद्ध स्वरूप को अनुभव होता है। बुद्धिपूर्वक का विभाव मिटाने के लिए भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, और अबुद्धिपूर्वक का परिणाम को मिटाने के लिए भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, क्योंकि इलाज में कोई दो इलाज नहीं है, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं, एक ही प्रकार का मोक्ष मार्ग है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वही मोक्ष मार्ग है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिटेगा, शुद्ध स्वरूप का अनुभव रहने से तो पैदा ही नहीं होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा, तो सहज मिट जाएगा, दूसरा उपाय तो कोई नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता, एक ही उपाय है। इसलिए एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाय है, देखो क्या कहा, एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वही मात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। तो ये तो मार्ग सरल हो गया कि विभाव चाहे बुद्धिपूर्वक का हो चाहे अबुद्धिपूर्वक का हो, मिटाने के लिए तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही एकमात्र उपाय है। और क्या करता हुआ निराश्र होता है सम्यक दृष्टि जीव? कि एव परवृत्तिम सकलाम उच्छिंदन, अवश्य ही जितनी भी वस्तु है पर मैंने जितनी ज्ञेय वस्तु है उसमें वृत्ति जाती है, यानी रंजित होती है, राग से द्वेष से मोह से रंजकपना, ऐसी परिणाम क्रिया जो सकल जितनी है उतनी शुभ रूप अथवा उसको उच्छिंदन, पर में वृत्ति जाती है उसमें अकेला अशुभ नहीं लिया, चाहे पंचेंद्रिय विषय जो पर पदार्थ है उसमें वृत्ति जाए, चाहे देव गुरु शास्त्र हो उसमें वृत्ति जाए, शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, उसको मूल से ही उखाड़ता हुआ सम्यक दृष्टि निराश्रो होता है, उच्छिंदन उसको उखाड़ देना, उखाड़ देना, मूल से उखाड़ देना है? हाँ, मूल से, ऊपर ऊपर से नहीं मिटाना, मूल से मिटा देना, उसका क्षय कर देना, फिर दोबारा कोई फिर से उसका कोई परिणाम हुए नहीं, ऐसा मूल से ही उखाड़ता हुआ सम्यक दृष्टि निराश्रो होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि निग नायक का संबंध दो प्रकार है, निग नायक का संबंध है वो दो प्रकार है, एक तो जानपना मात्र है, राग द्वेष रूप नहीं है, एक तो वितराग भाव से निग नायक संबंध होता है, वो जानपना मात्र है, जानने के काल में राग द्वेष रूप नहीं होता है। निग नायक का संबंध दो प्रकार से है, इसमें एक वितराग भाव में भी निग नायक पना होता है, यथा दृष्टांत है कौन, केवली सकल ज्ञेय वस्तु को देखते जानते हैं परंतु किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं करते, ज्ञेयनायक संबंध शुद्ध ज्ञेयनायक संबंध हुआ, उसमें राग द्वेष नहीं होता। निजानंद रसलिंग, ऐसे ही अपने स्वरूप में लीन होते हुए भी सकल ज्ञेय को जानते हैं केवली। क्योंकि सम्यक ज्ञान भी केवल ज्ञान की जाति का है, सम्यक ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा रहता है, वो जाति केवल ज्ञान की है, वितराग भाव से वो जानता है, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा जाता है। सम्यक दृष्टि को है कि नहीं है शुद्ध ज्ञान चेतना, कि सम्यक दृष्टि को तो शुद्ध ज्ञान चेतना ही है, वो ही लिया। सो सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, दृष्टांत केवली का लिया, केवली को शुद्ध ज्ञान चेतना है और सम्यक दृष्टि को भी शुद्ध ज्ञान चेतना है, इसलिए मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। पर ज्ञेय को जानना सम्यक दृष्टि को मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है, एवं चक्षुष है कि नहीं, एक प्रकार तो वो है। दूसरा जानपना ऐसा जो कितनी ही विषय रूप वस्तु का जानपना भी है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, मैंने भोग की अभिलाषा करता है तथा अनिष्ट में द्वेष करता है, यानी और रुचि करता है, सो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ है जो ज्ञान, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहा जाता है। जो पर पदार्थ में मोह वशात इष्ट अनिष्ट भाव होकर रंजायमान होता है, ऐसा ज्ञान को यहाँ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहने में आती है। और ऐसा परिणमन इसलिए बंध का कारण है, वो बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि को कर्म चेतना नहीं और कर्म फल चेतना नहीं। वो पंचास्ती काय 172 गाथा में वो लिया कि द्रविलिंगी है, 28 मूल गुण निरतिचार पालन करता है, नानाचार दर्शनाचार चारित्राचार वीर्याचार और तपाचार पंचाचार को पालन करता है, फिर भी कर्म चेतना में पड़ा है। क्या लिया वहाँ?
कर्म चेतना में पड़ा है।
कर्म चेतना में पड़ा है इसलिए वो कर्म बंध का उसको काम उसको शुभ कर्म का बंध होता है, वो परिणाम मोक्ष का कारण बिल्कुल नहीं है। ऐसा लिया है वहाँ 172 में। तो ऐसा जो शुद्ध चेतना लक्षण कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टि के नहीं है। मिथ्यात्व अवस्था में ऐसा परिणाम होता है। सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्या स्पष्टीकरण किया? उदय प्रसंग में वही मैं स्पष्ट करना जा रहा था कि उदय प्रसंग में राग तो होता है, तो क्या राग होता है लेकिन राग के साथ ज्ञान चेतना होती है, राग से मैं भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान का ज्ञान में अनुभव रहता है, उसको ज्ञान चेतना कहने में आती है। उदय के काल में जो राग द्वेष और चारित्र मोह के परिणाम होते हैं, लेकिन ज्ञान चेतना से क्या अनुभव होता है कि मेरे में नहीं होता है, होता है अपने में होता है लेकिन मेरे में तो नहीं होता है, मेरे से भिन्न है वो, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा विकल्प होता है वो बात नहीं, ऐसा अनुभव होता है, ऐसी बात है जी। कर्म फल चेतना मैंने कर्म फल का भोगने का रूप परिणाम, और कर्म चेतना मैंने कर्म करने का भाव कर्म करने का परिणाम, चेतना मैंने अनुभव भाव कर्म का स्वयं के रूप में अनुभव करना, वो कर्म चेतना, चेतना मैंने अनुभव करना कर्म को चेतना, कर्म चेतना मैंने कर्म को चेतना, षष्ठी समास है, छठी विभक्ति षष्ठी, कर्म का स्वयं के रूप में अनुभव करना, चेतना मैंने अनुभव करना, वो कर्म चेतना। और कर्म फल में होता हुआ जो हरक्ष शोक हर्ष शोक उसको स्वयं के रूप में अनुभव करना, वो कर्म फल चेतना। जो करता होता है वो भुगता अवश्य होता ही है, इसलिए अज्ञानी को दोनों चेतना है, कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। ज्ञानी को एक ही ज्ञान चेतना है, दूसरे दो चेतना नहीं है, नहीं होती। ये स्वविकल्प दशा में वो दूसरा निकला इसमें से, स्वविकल्प दशा में ज्ञानी को उदय के काल में ज्ञान चेतना रहती है, तो वो ज्ञान उपयोग पर में गया नहीं, कि भले ही उपयोग पर में गया लेकिन ज्ञान चेतना है वो, पर में जाने वाला उपयोग ज्ञान चेतना है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं है। ठीक, उसमें भी भिन्न रहता है कि नहीं रहता है? उपयोग गया तो एकत्व करता है क्या राग से और परद्रव्य से? वहां भी वो भिन्न रहता है। सम्यक दृष्टि का बाहर जाने वाला उपयोग भी एकत्व करता नहीं है, बाह्य भाव से बाह्य पदार्थ से एकत्व नहीं करता, भिन्न ही रहता है, वहां भी भिन्न रहता है। ऐसा अनुभव निरंतर चलता है, ऐसा अनुभव निरंतर चलता है, उसी को ज्ञान चेतना कहने में आती है, वही ज्ञान चेतना है। तो मान लेते ना कोई कि जो बाहर गया तो वो तो मिथ्या दृष्टि को जैसा जाता है वैसा सम्यक दृष्टि को जाता है, ज्ञान में तो दोनों सरेखा हो गया, उसका श्रद्धान बराबर है लेकिन ज्ञान में तो गड़बड़ हो ही गया कि नहीं। ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप रहा है, ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप नहीं हुआ, और ज्ञान चेतना है वो ज्ञान चेतना रही, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं हुई, तीन ही चेतना है, ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, अनुभव तीन प्रकार के ही होते हैं, उसमें दो प्रकार का अनुभव खत्म हो गया, नाश हो गया, उसका अभाव हो गया, एक ज्ञान चेतना रहेगी बस। इसलिए सम्यक दृष्टि का परिणाम मोक्ष का कारण है और बंध का कारण नहीं है। ऐसा परिणमन सम्यक दृष्टि को नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम गया होने से ऐसा परिणाम नहीं होता है। जिसको मिथ्यात्व का परिणाम नाश हो गया उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का परिणाम उसको नहीं होता है, इसे तो बहुत साफ है, स्पष्ट है। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है, सम्यक दृष्टि के होता ही नहीं। अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम कहो कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप परिणाम कहो, वो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, सम्यक दृष्टि को तो शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम होता है। और कैसा होता हुआ निराश्रव होता है सम्यक दृष्टि जी, कि ज्ञानस्य पूर्णः भवन, पूर्ण ज्ञान रूप होता हुआ अखंड ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा हुआ, अर्थ ऐसा निकाला है। वो केवल ज्ञान वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की बात है, सम्यक दृष्टि की बात है, ज्ञानी में भी सम्यक दृष्टि की बात लिया है। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान से ऐसा होता है। ज्ञान का खंडितपना भावार्थ इस प्रकार है, पूर्ण ज्ञान रूप होता हुआ इसका भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान का खंडितपना यह कि वह राग द्वेष से मिला हुआ है। जो ज्ञान राग द्वेष में एकत्व होकर के मिल जाता है भाव में, द्रव्य से नहीं मिल सकता, ज्ञानी का ज्ञान भी राग द्वेष रूप होता नहीं और राग द्वेष ज्ञान रूप होता नहीं। दूध में पानी डाला तो ये दूध मिलावट वाला है ऐसा कहा जाएगा, लेकिन पानी दूध होता नहीं और दूध पानी होता नहीं, कभी होता है क्या
नहीं,
बोला क्या जाएगा कि ये मिलावट वाला दूध है, शुद्ध चोखा दूध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पानी का दूध हो जाता तो फिर कोई कितना डालते उसका कोई लिमिट रहता नहीं, हद नहीं रहता, बेहद पानी डाल देते, क्यों, पानी का दूध हो जाता है मुफ्त में, डालो जितना हुए उतना, तो लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता, फिर तो इतना डाल देते लोग। ऐसा बनता नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि का राग में ऐसा कहता है कि ज्ञान का खंडित पड़ा मैंने राग द्वेष से मिला हुआ ज्ञान, तो क्या राग द्वेष ज्ञान रूप हो गया, ज्ञान राग द्वेष रूप हो गया, कि ऐसा हुआ नहीं है। हुआ नहीं है फिर भी अनुभव करता है, उसको मिथ्या अनुभव कहने में आता है, उसी का नाम मिथ्या अनुभव। उसको कहता है कि इसका ज्ञान मिला हुआ है, क्योंकि मिला हुआ अनुभव करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का भी उसका ज्ञान राग-द्वेष रूप नहीं हुआ, चाहे वो ज्ञान रूप नहीं हुआ, उसका हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी राग-द्वेष रूप हो सकता नहीं। ज्ञान तो ज्ञान गुण का परिणाम है और राग-द्वेष चारित्र गुण का परिणाम है। एक गुण का परिणाम दूसरे गुण के परिणाम रूप हो जाए, कभी बन सकता है? कभी वैज्ञानिक तौर से देखो तो भी नहीं हो सकता है, और अगर हो जाए तो फिर वो अलग हो नहीं सकता। वेद ज्ञान का प्रयोग करना करने का कोई बात रहती नहीं, अवकाश ही नहीं है। फिर अगर पानी दूध हो गया तो फिर उसको निकालने की जगह नहीं रही, गर्म करके। गर्म करने से पानी की हवा हो जाती है, दूध की हवा नहीं होती। दूध का तो मावा होता है, मलाई होती है, और पानी तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि पानी पानी रहा था, पानी दूध हुआ नहीं था। ऐसे भेद ज्ञान में भिन्न अनुभव किया जाता है। किसका? कि भिन्न है इसका भिन्न अनुभव किया जाता है। अगर भिन्न ही नहीं होता तो भिन्न का भिन्न अनुभव कैसे कर सकते हैं? अभिन्न हो गया, हम क्या करें? दोनों एक हो गया, अब अनुभव कैसे करें उसका? कि नहीं भैया, तेरा ज्ञान और तेरा राग भिन्न भिन्न है। भीतर में झांक करके देख तो सही कि तेरा ज्ञान और तेरा राग भिन्न भिन्न है। राग है सो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान है सो राग नहीं हुआ। तुझे जो एक रूप अनुभव आता है वो तेरा भ्रम है, तेरा परिणाम में धोखा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। राग द्वेष गए होने से ज्ञान का पूर्णपना कहा जाता है। क्योंकि राग द्वेष मिट गए इसलिए ज्ञान का पूर्णपना कहा जाता है, यानी कि राग द्वेष का अभाव को ज्ञान का पूर्णपना कहा। अभाव मैंने क्या कि ज्ञान में नहीं है उसका नाम अभाव। उसमें हो तो हो, अपने को क्या, हमारे में नहीं है, बात खत्म। नाम राग द्वेष रूप होता ही नहीं, हो तो भिन्न हो सके कैसे? भिन्न है उसको भिन्न अनुभवने का उपदेश है, क्योंकि भिन्न को भिन्न अनुभव नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं कि भिन्न है तो क्यों भिन्न अनुभव नहीं करता? जब है भिन्न तो अभिन्न अनुभव क्यों करता है? तो भिन्न अनुभव करने, ऐसा कहते हैं। चतुर्थ स्थान से राग और ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाता है, उसको ही पूर्ण ज्ञान कहने में आता है, इसका नाम पूर्ण ज्ञान। और ज्ञान का खंडित पड़ा यह राग द्वेष से मिला हुआ ज्ञान, वो अपूर्ण ज्ञान, ऐसा होता हुआ सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव है। सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता तो आश्रव का फल स्वरूप बंध भी नहीं होता, वो बंध परिणाम से परिणमता है। यह तो अध्यात्म का प्रकरण है, इसलिए करणानुयोग वाला हिसाब यहाँ लगाना नहीं। कभी करणानुयोग का विचार में लक्ष्मी लेना नहीं है बात, करणानुयोग वाली बात यहाँ लक्ष्मी नहीं लेनी है कि अल्प बंध है, विधिन कषाय बाकी है इसलिए उसको भी अल्प बंध है। करणानुयोग लेंगे तो ऐसा लेना पड़ेगा कि चार चौकड़ी में से एक चौकड़ी गई तो चारानी अभाव हुआ है, बारानी तो है, हिसाब किताब तो ऐसा लगेगा कि ऐसा समझ में होता है, लेकिन वो ज्ञान में गौण रूप रह जाता है, उसकी मुख्यता ही करनी नहीं चाहिए या लक्ष्य भी करना नहीं चाहिए, उतनी बात है। ये 116 कलश हुआ, 117 सर्वस्याम एव जीवन जीवंत्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञाने नित्यम एवति एवेति चेन्मति। खंडान्वय सहित अर्थ, यहाँ कोई आशंका करता है, शंका नहीं लिया, यहाँ कोई आशंका करता है। क्यों आशंका लिया? कि कहने वाले आचार्य भगवान है, कौन कहते हैं ये बात? आचार्य भगवान कहते हैं, तो आचार्य भगवान की प्रामाणिकता पर अगर शंका उठाई जाए तो उसको शंका कहने में आए। आशंका जब कहने में आती है कि आचार्य महाराज कहते हैं वो तो सही ही है, लेकिन मेरी समझ में बराबर नहीं आ रही है, इसलिए मुझे प्रश्न करने का भाव होता है। लेकिन प्रामाणिकता का स्वीकार करके, प्रामाणिकता में शंका नहीं है, इतनी बात है। और जो बात कहते हैं वो सत्य ही कहते होंगे, असत्य कभी हमारे आचार्य कहने वाले नहीं है, हमारे गुरु श्री गुरु कभी असत्य नहीं बोलते, कुछ भी बोले तो भी कभी असत्य नहीं बोलते। यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा और ऐसा ही है जो स्वीकार उसे सुन, ठीक है। 116 में टीका जब शुरू करते हैं तो छठी नीति में है, सर्वथा काल सर्वथा सर्वकाल सम्यक दृष्टि जीव आश्रव से रहित होता है। भावार्थ पर सर्वथा सर्वकाल तीन लोक और तीन काल, सर्वथा मां तीन तीन लोक और सर्वकाल मां तीन काल। भूतकाल के सम्यक दृष्टि ऋषभदेव भगवान तो जब राज में थे तब तो निराश्रव थे, लेकिन अभी के सम्यक दृष्टि पंचम काल वाले निराश्रव वाले होते हैं क्या? ऐसा होता नहीं है। तीनों काल सम्यक दृष्टि सर्वथा निराश्रव होता है, तो उसके सामने आशंका उठाई है इसी वचन के सामने कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव का और ऐसा ही है, मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बात है, ऐसा ही है, प्रश्नकार भी उसका स्वीकार करता है, परंतु किंतु परंतु थोड़ा अपने में आशंका रह गई है। परंतु नाना वर्ण आदि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है, पूर्व कर्म उसके जो अज्ञान दशा में बंधे हुए ज्ञानावरण आदि कर्म पिंड था वो तो वैसा का वैसा रहा, तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है, और इस पूर्व पूर्व कर्म का उदय भी चालू है तो कोई दरिद्री है, रोगी है, पाप का उदय चालू है और सम्यक दर्शन हो गया। पाप का उदय में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि नारकी को भी हो सकता है, तो क्या इनको नारकी मिट जाए क्या? त्रिंज को सम्यक दृष्टि हो तो त्रिंज बना छूट जाए क्या? नहीं, मनुष्य रोगी होता है, निर्धन होता है, और कोई राजा इंद्र होता है, देव होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, तो क्या पुण्य का उदय मिट जाए उसको? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वैराग्य होता है, विरक्त तो होता है, तो क्या देव का उदय उसको पुण्य की सामग्री मिट जाए क्या? कि नहीं, सामग्री भी पुण्य की हो या पाप की हो जैसी की तैसी रहती है, ऐसी ही है। तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता है, और इस कर्म के उदय में प्रतिकूलता हो तो प्रतिकूलता को भोग लेता है, अनुकूलता है तो अनुकूलता को भी भोग लेता है। इंद्रियों शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है, पंचेंद्रिय का विषय जो शरीर के माध्यम से भोगने में आता है वो भी जैसी थी वैसी ही रहती है। मैंने सम्यक दृष्टि हो गए और गृहस्थ हो गए तो घर से निकलकर जंगल में चला जाए क्या? हाँ, मनुष्य हो तो जंगल में चला जाए, देवलोक में कहाँ जाए, वहां तो जंगल है ही नहीं क्या करे? ऐसा कुछ होता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव जो कर्म का उदय है उसको भोगता भी है। इतनी सामग्री के रहते हुए कहो या भोगते हुए कहो, निराश्रोपणा कैसे घटित होता है ऐसा कोई प्रश्न करता है। सामग्री तो ऐसी करी और भोगता हुआ देखने में आता है, वो खाता है, सम्यक दृष्टि हो तो क्या आर पानी छोड़ दे क्या? है, सम्यक दृष्टि आर पानी को छोड़ देता है क्या? अरे मुनि होता है तो भी आर पानी ले होता है उसको, भले उसकी मर्यादा में एक दफे खड़े खड़े, लेकिन होता तो है। तो उसको भोगता है तो फिर उसको कैसा घटित होता है निराश्रोपणा सम्यक दृष्टि को? ये तो अविरत सम्यक दृष्टि है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। द्रव्य प्रत्यय संततो सर्वस्याम एव जीवन्त्याम ज्ञानी नित्यम निराश्रव कुतः, अभी प्रश्न लिया संस्कृत में। जीव के प्रदेशों में परिणमा है पुद्गल पिंड रूप अनेक प्रकार का मोहनी कर्म, आठों कर्म का उदय है उसको, सम्यक दृष्टि को भी आठों कर्म का उदय है। चार घाते का नाश तो तेरहवें गुण स्थान में होगा घाते का, और चौदहवें अघाते जाएगा, चार घाते का तो तेरहवें जाएगा, तो आठों का उदय है इधर। तो उसकी संतति स्थिति बंधु बहुत काल पर्यंत जीव के प्रदेशों में रहती है, जो जो बाकी है वो सब उदय में आएगा, जीव के प्रदेश में सब उदय में विपाक में क्रमशः आता रहेगा, लंबे काल तक आता रहेगा। तो सुखदेव भगवान को 83 लाख पूर्व तक आया, સંતતિ એટલે પરંપરા, એક પછી એક પછી એક પછી એક પછી. આપણે એમ કહેતો ભાઈ આ અમારી સંતતિ છે, અમારા દીકરા છે, પહેલા પછી આ પછીનો દીકરો, આ પછીનો દીકરો, આ પછીનો દીકરો, એમ નથી કહેતા. સંતતિ એટલે એની પરંપરા ચાલવી, પરંપરા ચાલવી, એક પછી એક સંતાન થવા. સંતાન થવાની ક્રિયાને સંતતિ કહેવામાં આવે છે. ઉસકી સંતતિ સ્થિતિબંધ રૂપ બહુતકાલ પર્યંત જીવ કે પ્રદેશોમાં રહેતી હૈ. જીવ કા પ્રદેશોમાં જે કાંઈ એની સ્થિતિ બંધાણી છે, ભિન્ન ભિન્ન કર્મ કી સ્થિતિ જો બંધી હોઈ હૈ, પ્રદેશોમાં રહેતી હૈ, અપને અપને સ્વકાલ મેં ઉદય આયેગી. હા, મોરની ચારિત્ર મો રહા, દર્શન મો નહીં રહા, ચારિત્ર મો હૈ, ઉદય મેં આતા હૈ ચારિત્ર મો. જીતની હોતી જૈસી હોતી ઉતની હી હૈ વિદ્યમાન હૈ સર્વસ્યામ જીવન ત્યામ. જીવતી હૈ અભી, ક્યા કહેતા હૈ, મરી નહીં. કર્મ કી સંતતિ અભી મરી નહીં, હું તો સ્થિતિ પૂરી હોને સે મરેગી. વો તો અભી જ્યાં તક હૈ વહાં તક જીવતી હૈ, સર્વસ્યામ સભી જીવતી હૈ, જીતની હૈ પડી હૈ વો સભી જીવતી હૈ, વિદ્યમાન હૈ, વૈસી હી હૈ, જૈસી હોતી હૈ વૈસી. કોઈ મોહની કર્મ હૈ તો કોઈ અમોહની નહીં હુઆ, જ્ઞાનાવરણી કોઈ અજ્ઞાનાવરણી નહીં હુઆ, અંતરાય કોઈ અનંતરાય નહીં હુઆ. જ્ઞાની સત્સંગ કો ઈચ્છતે હૈ, જૈસે શ્રી ગુરુ કા સંયોગ ઉસકો સંગ મેં રહેના ચાહતે હૈ. સુગાની જી ચાહતે થે અંતરાય કર્મ કા ઉદય થા, સંગ મે નહીં રહે પા સકે, તો હમેશા હોતા હૈ જૈસી હૈ વૈસી વિદ્યમાન હૈ. જ્ઞાની જ્ઞાની કો ભી અંતરાય આદિ વિદ્યમાન રહેતા હૈ. નિશ્ચય સે ફિર ભી, એ એટલે નિશ્ચય સે, ખરેખર એસા હોતા હૈ, ફિર ભી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ સર્વથા સર્વકાલ, જો સર્વથા સર્વકાલ, જો 116 મેં લિયા થા વહી શબ્દ લિયા, વહી લિખને વાલે તો વહી હૈ ને, સર્વથા સર્વકાલ આશ્રવ સે રીત હૈ એસા જો કહા, સો ક્યા વિચાર કરકે કહા, બતાઈએ તો સહી, એસા કહા તો ક્યો, આપને એસા ક્યો કહા, જરા સમજાઈએ તો સહી, હમકો સમજ મેં નહીં આ રહી હૈ. ચેત ઇતિ મતિ, વો શિષ્ય યદિ તેરે મન મે એસી શંકા હૈ તો ઉત્તર સુન. ચેન ઇતિ મતિ, ચેત જો તેરી એસી મતિ હુઈ આશંકા કરને કી, આપ કૈસે કહેતે હો, ઉનકો તો આઠો કર્મ કા ઉદય હૈ, સામગ્રી કો ભોગતા હૈ, ઓર યે આપ ઉસકો સર્વથા ઓર સર્વકાલ નિરાસર્વ કહેતે હૈ, તુજે એસા હો સકતા હૈ, આશંકા હોગી તુજે, કોઈ બાત નહીં, સુન તુ. યે તો કળા શ્લોક હૈ, વો પ્રશ્ન ઉઠાને કે લિયે હૈ, ઉત્તર તો પીછે કે કલશ મે દેંગે. કે બીજ હતી બીજ હતી નહીં સત્તામ, પ્રત્યય પૂર્વબદ્ધા સમય અનુસરંતો યદ્યપી દ્રવ્ય રૂપા તદપિ સકલ રાગ દ્વેષ મોહ યુદા સાથ અવતરતી ન જાતો જ્ઞાની નહ કર્મ બંધ હૈ. સબ હૈ ફિર ભી ઉસે ઉદાસ હૈ, ઉસમે ઉસકો રસ આતા નહીં, આઠો કર્મ કે ઉદય મે રસ નહીં હૈ. દૂસરી બાત તો ઠીક હૈ, લેકિન આયુ કા ક્યા કરના, આયુ પૂરા હોને સે તો મૃત્યુ હોતી હૈ, તો સમ્યક દ્રષ્ટિ કો જિંદા રહેને હોને મે રસ નહીં હૈ ક્યા, કે નહીં હૈ. उसको वर्तमान आयु पर्याय का भी ममत्व होता नहीं, इस मनुष्य पर्याय मेरी चालू रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं मरूं तो अच्छा है, ऐसा ममत्व उसको होता क्यों कि मैं तो मरता ही नहीं, फिर नहीं मरूं सवाल कहां से होता है, मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, फिर नहीं मरना मरने का क्या सवाल होता है। उसको वर्तमान पर्याय का आयु कर्म का भी ममत्व होता नहीं है।
स्वरूप देख लिया है,
इसलिए शाश्वत शाश्वत पद को देख लिया, तो मृत्यु को कहां से देखेंगे। और जब देह छूटती है तो सम्यक दृष्टि तो प्रतिक्षण समय समय मोक्ष प्रति चल जाता है अपने भाव में, तो मोक्ष की मुसाफरी क्या मोक्ष की मुसाफरी में है, मुसाफरी में निकलते क्या नहीं निकलते, अपन यात्रा को निकले तो पहले सुकुन देखते हैं, सुकुन देखते क्या नहीं देखते,
देखते
हैं। तो अच्छा सुकुन यात्रा करने को जाना है, शिखर जाना है, तो कोई रास्ते में विघ्न नहीं आ जाए, थोड़ा सुकुन देख के निकलो। ये मोक्ष की यात्रा में सम्यक दृष्टि को सुकुन कौन सा है कि ये देह छूटने के काल में पुरुषार्थ को तीव्र करता है, वही उसका सुकन है। शुद्धोपयोग का सुकन करता है, क्या सुकन करते हैं वो
शुद्धोपयोग का,
कि पुरुषार्थ बढ़ा के उस वक्त शुद्धोपयोग में आ जाता है, वो शुद्धोपयोग है, वो शादी अनंत का शुद्धोपयोग का सुकन है, इधर सुकन हो गया उसको। तो फिर उसको तो कोई उसका द्वेष होता नहीं है कि अरे आयु छूट जाएगी, मनुष्य बना मिट जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा, मैं मनुष्य ही नहीं, मैं तो चैतन्य देव हूँ, दिव्य शक्तियों का धारक हूँ, मैं मनुष्य हूँ। नहीं है ही नहीं, मृत्यु का भ्रम है, चीज होवे तो उसको भ्रम नहीं बोलते, लेकिन ऐसी चीज कोई है ही नहीं। न तो जीव का नाश होता है, न तो शरीर के एक परमाणु का भी नाश होता है, अभाव नहीं होगा। अनंत परमाणु का पिंड है वो शरीर, वो अनंत तो अनंत पर्याय बदल कर रह जाएगा, दूसरी जगह पर्याय उसके पलटेगी, जीव के पर्याय पलटेगी, परमाणु के पर्याय पलटेंगे, दोनों में से किसी का अभाव होने वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर मृत्यु किसकी, जब दो द्रव्य है और दो में से किसी का नाश नहीं होता, फिर मृत्यु किसकी हुई, कि मृत्यु किसकी हो सकती नहीं है। उसका शिलान्यास किया, मोक्ष पर्याय का पूर्ण शुद्धि का सिद्ध पद का शिलान्यास है, वो जो शुद्धोपयोग आता है वो सिद्ध पद का शिलान्यास है। शिलान्यास के प्रसंग पर तो अपन को महोत्सव मनाते कि नहीं मनाते, उसको महोत्सव कहते हैं, उसमें कोई दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, पूरा बिल्डिंग उसका होगा, 14 गुण स्थान का 15वां तक आगे पहुंच जाएगा, 15 मजले का हो जाएगा पूरा। क्या हुआ है कि एक आदमी दूसरे की संपत्ति को अपने जानकर संभालता था, जब उसको पता चला कि ये मेरी है नहीं, तो उसको लगा कि ये मैंने फालतू मजदूरी किया, मेरी तो चीज थी नहीं, मेरी मान करके मैंने चिंता किया, उसको संभालने का टेंशन किया, सब किया, लेकिन तो मेरी तो थी नहीं। ज्ञान होता है तो पता चलता है कि ये फालतू मजदूरी किया, पर मेरी संपत्ति है उसको तो संभाली नहीं थी उस वक्त, जब मैं संयोग को संभालता था वो पुद्गल की संपत्ति थी, मेरी मानकर संभालने लगा। जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि मेरी संपत्ति को तो संभाली नहीं और पड़ोसी की संभाली अपनी जान करके, झूठा टेंशन लिया, फालतू तनाव में आ गया मैं, ऐसा लगता है उसको। खंडान्वय सहित अर्थ, तदपि ज्ञानेन जातो कर्म बंध न अवतरति, तो भी मैंने क्या कि पूर्व कर्म का उदय होता है, उदय को भोगता है, तो भी सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित किसी भी नए से नाना वर्णादि रूप पुद्गल पिंड का नूतन आगमन कर्म रूप परिणमन नहीं होता है। कदाचित कोई काल में किसी भी नए से कोई भी अपेक्षा से, ठीक कितना वजन है राजमल जी का, करुणानुयोग की अपेक्षा से तो होता होगा,
कहीं नहीं,
किसी भी नए से नहीं लेना है हमको तो। नानावरणादि रूप पुद्गल पिंड का नूतन आगमन कर्म रूप परिणमन नहीं होता, तो क्या सिद्ध पद हो गया है? सही मुक्त हाँ, दूसरा नहीं है ही नहीं, मैं दूसरा नहीं है ही नहीं, किसने से देखे, हमारे पास तो दूसरा नहीं है, नहीं नहीं है तो दूसरा नहीं है तो फिर एकांत हो जाएगा, तो सम्यक एकांत हो जाएगा और होने भी दो उसको, सम्यक एकांत होने दो, ऐसी बात है। ऐसा अध्यात्म में तो ऐसा जोर आता है, देखो ना, सुनता है लेकिन नहीं सुनने के बराबर नहीं सुनने के बराबर है वो बात, जो बराबर सुने तो अंदर में उतरे बिना रह नहीं। अथवा जो कभी सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक राग द्वेष परिणाम से बंद होता है, अति ही अल्प बंद होता है, तो भी सम्यक दृष्टि जीव के बंद होता है, ऐसा कोई तीनों काल में कह सकता नहीं, जाओ ठीक तो अल्प होता है, थोड़ा होता है कि नहीं, वो नहीं कह सकते हैं, वो बंद होता है ऐसा, उसको बंद होता है ऐसा नहीं कह सकते, जाओ। क्यों, आगे कैसा होने से बंद नहीं, क्योंकि उसका भाव प्रतिबंध नहीं है, वह उसका भाव प्रतिबंध नहीं है, इसलिए द्रव्य बंध उसको नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, कैसा होने से बंद नहीं, कि सकल राग द्वेष मोह विदा साथ, जिस कारण से ऐसा है उस कारण से बंद नहीं घटित होता, जो कारण है वो कारण ऐसा है कि बंद उसको घटित नहीं होता, ऐसा कारण है। कैसा है कि जितने शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, सकल प्रीति रूप परिणाम, राग रूप परिणाम, द्वेष दुष्परिणाम, द्वेष दुष्ट रूप द्वेष परिणाम, मोह मैंने पुद्गल द्रव की विचित्रता में आत्मबुद्धि ऐसा विपरीत रूप परिणाम, दर्शन मोह रूप परिणाम, पुद्गल द्रव की विचित्रता में आत्मबुद्धि ऐसा विपरीत रूप परिणाम, ऐसे तीनों ही परिणामों से रहित पना ऐसा कारण है, इसके सामग्री के विद्यमान होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंध का कर्ता नहीं है। तो विदासात का अर्थ हो क्या? विदासात मैंने उदासीनता नहीं लिया, है ही नहीं। शब्दार्थ में कैसा लिया? समय सार में 118 राग द्वेष का मोह का अभाव होने से यह विदासात का अर्थ अभाव लिया है। सकल राग द्वेष मोह भावों का अभाव होता है, भावों का अभाव होता है। सकल राग द्वेष मोह रूप भावों का अभाव होता है। क्यों अभाव लिया? तो उसका स्वामित्व नहीं है, इसका स्वामित्व नहीं है, इसलिए अभाव लिया। वो कारण है। जितने शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, प्रीति रूप अथवा द्वेष रूप अथवा मोद मोह पुद्गल द्रव्य की विचित्रता में आत्मबुद्धि, ऐसा विपरीत रूप परिणाम और राग द्वेष में भी आत्मबुद्धि तो होती नहीं है। तो आत्मबुद्धि नहीं है इसलिए उसका अभाव बोल दिया। आत्मबुद्धि नहीं होने से उसको अभाव बोला। जब अपने में नहीं है तो उसका बंधन भी अपने को नहीं है। एक मकान बेच दिया, बेच करके उसको बोला कि भाई हमको खाली करने में थोड़ी देर लगेगी, मालिक आप है हम नहीं है, हमने पैसा ले लिया, आपको डॉक्यूमेंट असाइन कर दिया, अब हम दूसरा मकान ट्रांसफर करें, उतना दिन तो वहां रहेंगे, लेकिन उस घर का बंधन रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं, अभी इस घर में कोई बंधन नहीं रहा। फिर उसकी मरम्मत करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। कुछ नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो क्यों फालतू मेहनत करे, अपना है ही नहीं। रहित पुणा होना, तीनों ही परिणामों से रहित पुणा ऐसा कारण है, उसमें भाव नहीं है ऐसा कारण है। इस सामग्री के विद्यमान होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंध का कर्ता नहीं है। वो भाव नहीं है इसलिए उसको स्वामित्व का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ राग द्वेष मोह का अभाव लेने में आया है, और इसलिए उसको कर्म बंध भी नहीं है।
परम कृपा